السلام علیکم، یہ پارٹ 19 ہے ناول ڈیول مائنڈ۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کنور خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 19۔ البرٹ 2 نے ہیلی کاپٹروں کے نیچے لگی ہیوی مشین گنوں کو گھوم کر ان پاکستانی ایجنٹوں کی طرف ہوتے ہوئے دیکھا۔ کرنل ڈیوگن نے شاید ان سب کو ریت میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسی لمحے البرٹ 2 نے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی ہیوی مشین گنوں کے دہانوں سے دھاروں کی شکل میں بے شمار شولے لپکتے دیکھے، اور دوسرے لمحے تڑتڑا گولیاں برستی ہوئی اور ریت پر لمبی لکیریں بناتی ہوئی اور ریت اڑاتی ہوئی ٹھیک اس طرف بڑھتی چلی گئی جہاں پاکستانی ایجنٹ موجود تھے۔ اور پھر البرٹ 2 نے ٹھیک اس جگہ گولیاں برستے دیکھی جہاں وہ سب موجود تھے۔ جسے لمحے البرٹ 2 نے پاکستانی ایجنٹوں کو ریت کے نیچے تڑپتے اور بری طرح سے اچھلتے ہوئے دیکھا، سب اچھل اچھل کر ریت سے باہر گئے تھے۔ ظاہر ہے جن انسانوں پر بارش کی طرح سے گولیاں برس رہی تھی وہ تڑپے اور اچھلے بغیر کیسے رہ سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹروں کی مشین گنوں کی گولیوں نے ریت میں چھپے ہوئے تمام پاکستانی ایجنٹوں کو ہٹ کر دیا تھا۔ پاکستانی ایجنٹوں کو اس طرح تڑپتے اور اچھلتے ہوئے ریت سے باہر آتے دیکھ کر البرٹ 2 کے چہرے پر انتہائی سکون آ گیا۔ چلو یہ قصہ تو تمام ہوا، کرنل ڈیوگن نے میرے بتانے سے پہلے ہی ان سب کو دیکھ کر ہلاک کر دیا ہے۔ اب مجھے لاشوں پر نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرنل ڈیوگن خود ہی اس باس کو کال کر کے ان ایجنٹوں کے ہلاک کے بارے میں بتا دے گا۔ چیف کے آنے سے پہلے مجھے اب فوراً جا کر ٹنل کا فین ٹھیک کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ چیف یہاں پہنچ جائیں۔ اگر میں نے ٹنل بند کرنے میں دیر کی تو چیف مجھ سے سخت بات پرس کرے گا، البرٹ 2 نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر پاکستانی ایجنٹوں کی لاشیں دیکھی، پھر اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے مشین آف کرنی شروع کر دی۔ 10 ہیلی کاپٹر، او ان کا تو پورا اسکواڈ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے، چوہان نے دور سے آتے ہوئے ہیلی کاپٹروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جلدی کرو، سب ریت میں چھپ جاؤ، ہری اپ ہری اپ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ریت میں چھپنے سے اب کیا فائدہ، انہوں نے اب تک دور بینوں سے ہمیں دیکھ لیا ہوگا، وہ ہمیں ریت میں چھپتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے، اس لیے ریت میں چھپنے سے بہتر ہے کہ ہم سب اپنا اسلحہ نکال لیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تنویر نے کہا۔ جس طرح عمران کے کاندھوں پر بیگ بندھا ہوا تھا اسی طرح ان کے کمروں پر بھی بیگ بندھے ہوئے تھے جن میں اسلحہ تھا، اور ان کے بیگ بند تھے اس لیے ان کا اسلحہ طوفان میں ضائع نہیں ہوا تھا۔ اسلحہ نکال لو، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان سے چھپنا ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ لیکن کیوں، جب وہ ہمیں دیکھ ہی چکے ہیں تو ہمیں ان سے چھپنے کا کیا فائدہ ہوگا، وہ فوراً اس جگہ کو گھیر لیں گے جہاں ہم چھپے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کی مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں ٹھیک ہمیں لگیں گی اور ہم کوشش کے باوجود بھی گولیوں کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکیں گے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، عمران نے بیگ سے مشین پسٹل اور ایک منی میزائل گن نکالتے ہوئے کہا۔ تم بھی یہی چاہتے ہو؟ کیا مطلب، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ آسانی سے ہمیں گولیوں کا شکار بنا کر ہلاک کر دیں، جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی سب بھی حیرت بھری نظر سے عمران کی جانب دیکھ رہے تھے جسے انہیں عمران کی بات کا مقصد سمجھ میں ہی نہ آیا ہو۔ اطمینان رکھو، ہمارے جسموں میں ہارڈ بلاکس ہیں، ہم پر نہ کوئی گولی اثر کرے گی اور نہ کوئی بم، وہ ہم پر اوپر سے ہی فائرنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور ہمیں ان پر یہی ظاہر کرنا ہے کہ ہم ان کی چلائی ہوئی گولیوں سے ہٹ ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ان میں سے کوئی ہیلی کاپٹر نیچے نہیں آئے گا، ان ہیلی کاپٹروں نے یہاں آ کر میری مشکل آسان کر دی ہے، میں ان میں سے کسی ایک ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہیلی کاپٹر تب ہی نیچے آئیں گے جب انہیں ہم ہٹ ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، हम रेत में छुपेंगे, तो वो यही समझेंगे कि हम इनसे डरकर छुप रहे हैं। फिर जब वो फायरिंग करेंगे और हमारे जिस्मों से गोलियां टकराएंगी, तो हम तड़पते हुए और उछलते हुए रेत से बाहर निकल आएंगे। हमारी लाशें चेक करने के लिए इन्हें नीचे आना ही पड़ेगा, फिर हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, इमरान ने तेज तेज और मुसलसल बोलते हुए कहा। तो वो सब इसकी प्लानिंग समझ गए। इन सब ने बैगों से अपना मतलूबा असला निकाला और नीचे लेट कर तेजी से खुद पर रेत डालना शुरू हो गए। अभी वो रेत में छुपे ही थे कि दूर से आते हुए हेलीकॉप्टरों से अचानक जबरदस्त फायरिंग होना शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर वालों ने शायद इन्हें रेत में छुपते हुए देख लिया था। हेलीकॉप्टरों के नीचे और साइडों में लगी हुई हैवी और रिवॉल्विंग मशीन गनों की गोलियां शोलों की लंबी लंबी लकीरें बनाती हुई रेत पर पड़ रही थी और वो लकीरें तेजी से इस तरफ बढ़ी चली आ रही थी जहां इमरान और इसके साथी रेत में छुपे हुए थे। फिर बेशुमार गोलियां इनके जिस्मों से टकराती चली गईं। जैसे ही इनके जिस्मों से गोलियां टकराई, इन्हें जोरदार झटके लगे और वो रेत में यूं तड़पने लगे जैसे इन्हें सचमुच गोलियां लग गई हों। वो सब बुरी तरह से तड़पते हुए और उछलते हुए रेत से बाहर आ गए और यूं सख्त हो गए जैसे इनके जिस्मों से जाने निकल गई हों। हेलीकॉप्टर इन पर गोलियां बरसाते हुए आगे निकल गए थे। आगे जाते ही वो दाएं बाएं पलटे और यू टर्न लेते हुए मुड़कर इस तरफ बढ़ने लगे जहां उन्होंने इमरान और इसके साथियों पर फायरिंग की थी। इमरान और इसके साथी गॉगल्स से इन हेलीकॉप्टरों को बखूबी देख सकते थे। हेलीकॉप्टर नहायत नीची परवास कर रहे थे और इनसे काफी फासले पर नीचे उतर रहे थे। इन हेलीकॉप्टरों से फोर्स निकलकर जैसे ही इस तरफ आए, तुम सब इन पर हल्ला बोल देना। ये तमाम हेलीकॉप्टर ब्लैक हार्ट एजेंसी के हैं। हमें अगर इनका एक हेलीकॉप्टर भी मिल जाए तो हम इस हेलीकॉप्टर में आसानी से इनके हेडक्वार्टर जा सकते हैं, इमरान ने इनकी तरफ देखे बगैर तेज तेज बोलते हुए कहा। इसने हेलीकॉप्टर पर सिर्फ दिल का निशान देख लिया था जो ब्लैक हार्ट एजेंसी का मखसूस निशान था। दिल के निशान के दरमियान में सुर्ख रंग का एक फौजी बना हुआ था जिसके हाथ में संगीन वाली बंदूक थी और वो इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी दुश्मन पर झपट रहा हो। जरूरी नहीं कि ये हेलीकॉप्टर ब्लैक हार्ट के मैन हेडक्वार्टर से आए हों। ब्लैक हार्ट के इसराइल में बेपनाह सेक्शन है। ये हेलीकॉप्टर इनमें से किसी दूसरे सेक्शन के भी तो हो सकते हैं, जूलिया ने कहा। जो भी है, हमारे लिए इनका एक हेलीकॉप्टर हासिल करना बेहद जरूरी है और अगर इनका कोई आदमी जिंदा हमारे साथ लग गया तो हम इससे उगलवा सकते हैं कि इसका ताल्लुक मैन हेडक्वार्टर से है या ब्लैक हार्ट के किसी दूसरे सेक्शन से, इमरान ने कहा। बाकी सब का क्या करना है, तनवीर ने पूछा। वही जो तुम हमेशा करते हो, इमरान ने सादा से लहजे में कहा और इसका जवाब सुनकर तनवीर के चेहरे पर रंगत सी बिखर गई। जैसे इमरान इसके दिल की बात भांप ली हो और इसे एक्शन में आने का मजा सुना दिया हो। लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक हम सब इस जगह से मीलों दूर हैं जहाँ हमें मॉन्डर ने घेरा था, सफदर ने कहा। मेरे ख्याल में ब्लैक हार्ट एजेंसी हमें किसी सैटेलाइट से मुसलसल मॉनिटर कर रही है, कैप्टन शकीन ने कहा। अगर ऐसा होता तो इनका ये स्क्वाड बहुत पहले यहाँ पहुँच गया होता, सिद्दीकी ने कहा। इन्हें शायद सहरा में तूफान के आने का पहले से ही इल्म हो गया था और इनका ख्याल था कि अगर हम तूफान में फंस जाएं तो किसी भी सूरत में नहीं बच सकेंगे। और वाकई अगर हम पर अल्लाह का खुसूसी करम ना होता और हमने हार्ड ब्लॉक्स ना पहने हुए होते तो हमारा अंजाम इनकी सोच के मुताबिक ही होना था। तूफान के खत्म होने के बाद जब उन्होंने दोबारा डिजर्ट की चेकिंग की होगी तो हम इन्हें जिंदा दिखाई देंगे, इसलिए हमें खत्म करने के लिए उन्होंने फोर्स भेज दी है। हेलीकॉप्टरों पर दिल बने हुए हैं जिनमें सुर्खी फौजी बने हुए हैं, जिससे मालूम होता है कि इन हेलीकॉप्टरों में या तो रेड कमांडोज भेजे गए हैं या रेड फोर्स, इमरान ने कहा। इस दौरान तुम तमाम हेलीकॉप्टरों की पैर नीचे लग चुके थे और हेलीकॉप्टरों के दरवाजे खुल रहे थे, जहाँ से सुख लिबासों वाले मुसल्ला अफराद उछल उछल कर बाहर आ रहे थे और तेजी से दौड़ते हुए इनकी तरफ जा रहे थे। वो हमारे नजदीक आ रहे हैं। खावर ने सुख लिबास वाले मुसल्ला अफराद को दौड़ कर आते देखकर तेज लहजे में कहा, तो देख क्या रहे हो, उठो और पल पड़ो इन पर, लेकिन याद रखना मुझे एक हेलीकॉप्टर और इनका एक आदमी जिंदा चाहिए, इमरान ने तेज लहजे में कहा। और वो सब यकलक मशीन गने लेकर नारे तकबीर बुलंद करते हुए उठ खड़े हुए। इन सबको यूं उठते देखकर न सिर्फ बाहर मौजूद सुख लिबासों वाले मुसल्ला कमांडो बल्कि हेलीकॉप्टरों में मौजूद पायलट भी बुरी तरह से चौंक उठे। इस तरफ भाग कर आने वाले सुख लिबास वाले कमांडोज इन्हें उठते देखकर वहीं रुक गए थे। फिर अचानक इन्हें जैसे होश आ गया, दूसरे लम्हे माहौल अचानक मशीन गनों की तेज फायरिंग से गूंज उठा। रेड कमांडोज ने इन पर यकलक फायरिंग करना शुरू कर दी थी। ये देखकर जूली और इसके साथियों की मशीन गनों ने भी शोले उगलना शुरू कर दिए। इमरान ने जेब से एक मिनी मिसाइल गन निकाली और इसने उठकर मिनी मिसाइल गन का रुख दाएं तरफ मौजूद एक हेलीकॉप्टर की तरफ किया, जिसका पायलट इन्हें उठता देखकर अपना हेलीकॉप्टर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वह हेलीकॉप्टर बुलंद होता, इमरान के मिसाइल गन से एक मिनी मिसाइल निकला और बिजली की सी तेजी से हेलीकॉप्टर के फ्रंट से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर फट कर यूं टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसे वहां कोई आतिश शीशा फट पड़ा हो। इमरान ने एक और हेलीकॉप्टर को मिसाइल मारा और फिर वो तेजी से इस तरफ भागता चला गया जिस तरफ हेलीकॉप्टर उतरे हुए थे, जो इन सबको उठते और एक्शन में आते देखकर दोबारा बुलंद होने की कोशिश में थे। इमरान के बाकी साथी इधर उधर भागते हुए रेड कमांडोज पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। रेड कमांडोज इन पर तसलसल से गोलियां बरसा रहे थे। इनके जिस्मों पर गोलियां लग रही थी, लेकिन चूंकि इनके लिबासों के नीचे हार्ड ब्लॉक थे, इसलिए इन पर किसी गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सिर्फ रेड कमांडोज की तरफ से बरसने वाली गोलियों से अपने चेहरे बचा रहे थे, क्योंकि हार्ड ब्लॉक इनके चेहरों पर नहीं थे। और अगर कोई भूली भटकी गोली इनके चेहरे या सर पर पड़ जाती तो इनकी मौत का बाइस बन सकती थी। वो सब तेजी से भागते हुए रेड कमांडोज के नजदीक आ गए थे। रेड कमांडोज ने इन पर फायरिंग करते हुए इन पर हैंड ग्रेनेड्स भी बरसाना शुरू कर दिए थे, जो इनके इर्द गिर्द आकर फटते और माहौल जोरदार धमाकों से गूंज उठता। वो हैंड ग्रेनेड्स से बचने के लिए दाएं बाएं छलांगे लगा जाते थे। हार्ड ब्लॉक्स की वजह से हैंड ग्रेनेड्स भी इन्हें जख्मी नहीं कर सकते थे, लेकिन हैंड ग्रेनेड्स के टुकड़े इनके चेहरों और सरों पर भी पड़ सकते थे, इसलिए वो हत्ता अलवसा इन ग्रेनेड से बचने की कोशिश कर रहे थे। इमरान तेजी से दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टरों की तरफ बढ़ा जा रहा था। इनमें से चार हेलीकॉप्टर काफी बुलंद हो गए थे। इमरान ने इन हेलीकॉप्टरों को बुलंद होते देखा तो इसने भागते भागते एक हेलीकॉप्टर का निशाना लिया और मिसाइल फायर कर दिया। भागने के बावजूद इसका निशाना बेदाग था। इसका चलाया हुआ मिसाइल हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा तो पायलट ने घबरा कर हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ना चाहा, लेकिन इसी लम्हे इसका हेलीकॉप्टर दाएं तरफ दूसरे उठते हुए हेलीकॉप्टर से टकरा गया। साथ ही इमरान का चलाया हुआ मिसाइल इस हेलीकॉप्टर से जा टकराया। दूसरे लम्हे माहौल के बाद दीगरे मस्जिद दो और धमाकों से गूंज उठा। बाएं तरफ से बुलंद होने वाली दो हेलीकॉप्टरों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे इन हेलीकॉप्टरों से दो अलग अलग जगहों से मिसाइल बन होकर टकराए और दोनों हेलीकॉप्टर फट कर आग के फुहारे बुलंद करते हुए दूसरी तरफ गिरते चले गए। इन दोनों हेलीकॉप्टरों को जूलिया और सफदर ने मिनी मिसाइल गनों का निशाना बनाया था, जिन्होंने इन हेलीकॉप्टरों को बुलंद होते हुए देख लिया था। सहरा मैदान का कारजार में तब्दील हो गया था। हर तरफ से मशीन गनों की तड़तड़ाहट और खौफनाक धमाके सुनाई दे रहे थे और साथ ही इंसानों की तेज और भयानक चीखें भी गूंज रही थी, जो इन रेड कमांडोज के थे, जिन्हें इमरान और इसके साथी मशीन गनों और मिसाइल गनों से निशाना बना रहे थे। रेड कमांडोज का मुकाबला करते हुए वह हेलीकॉप्टरों की तरफ भी तवज्जो दे रहे थे। जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर बुलंद होना शुरू होता था, इमरान या इसका कोई साथी मिसाइल मारकर इसे वहीं तबाह कर देता था। वहाँ 50 से ज्यादा रेड कमांडोज थे, जो इन्हें हलाक करने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इनकी बदकिस्मती ही थी कि इनकी गोलियों का इन पाकिस्तानी जांबाजों पर कुछ असर नहीं हो रहा था। 6 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके थे, जिन्हें इमरान और इसके साथियों ने तबाह किया था। बाकी 4 हेलीकॉप्टरों के पायलटों ने शायद ये देख लिया था कि इनके दुश्मन सिर्फ इन्हीं हेलीकॉप्टरों को निशाना बना रहे हैं, जो ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाकी 4 हेलीकॉप्टरों के पायलटों ने अपने हेलीकॉप्टर ऊपर उठने की कोशिश नहीं की थी। इमरान भागता हुआ एक हेलीकॉप्टर के सामने आ गया। इस हेलीकॉप्टर के फ्रंट से इसे पायलट साफ दिखाई दे रहा था, जो इमरान की जानिब बड़े खौफ भरी नजरों से देख रहा था। वो हेलीकॉप्टर में अकेला ही था। इमरान ने सामने आकर मिसाइल गन का रुख पायलट की तरफ करते हुए इसे हेलीकॉप्टर से बाहर आने का इशारा किया, तो पायलट ने फौरन सर पर मौजूद हेडफोन उतारा और अपनी साइड का दरवाजा खोलकर उछल कर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। इसने हेलीकॉप्टर से कूदते ही अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए थे। इमरान बिजली की सी तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और फिर इससे पहले के पायलट कुछ समझता अचानक इमरान का बाजू लहराया और पायलट चीख मारकर पुश्त के बल गिर गया। इमरान ने इसके मुंह पर जोरदार पंच मार दिया था। पायलट ने उठने की कोशिश की ही थी कि इमरान की घूमती हुई टांग ठीक पायलट के सर पर पड़ी और पायलट एक बार फिर गिरा और साख्त हो गया। इमरान ने इसके सर पर जोरदार जब्त लगाई थी, जिससे वो बेहोश हो गया था। पायलट को बेहोश करके इमरान तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे वो हेलीकॉप्टर की पायलट सीट पर था। इसने हेलीकॉप्टर में दाखिल होते ही अपनी साइड का दरवाजा बंद कर लिया था। हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट था और होटल पूरी तरफ से घूम रहे थे। इमरान ने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। अपने एक हेलीकॉप्टर में एक दुश्मन को दाखिल होते देखकर बाएं तरफ मौजूद एक हेलीकॉप्टर के पायलट को भी जैसे मौका मिल गया, इसने भी तेजी से अपना हेलीकॉप्टर ऊपर उठा लिया था। इस हेलीकॉप्टर का पायलट समझ गया था कि हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने वाले दुश्मन के साथी इसके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल नहीं बरसा सकेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस हेलीकॉप्टर के साथ इनके साथी का हेलीकॉप्टर भी तबाह हो सकता था, जो इसके हेलीकॉप्टर से ज्यादा फासले पर नहीं था। इमरान ने बुलंदी पर जाते ही तेजी से हेलीकॉप्टर मोड़ा और तेजी से कुछ दूर खड़े एक हेलीकॉप्टर की तरफ गोता मारा। साथ ही इसने मिसाइल बटन प्रेस कर दिया और दूसरे लम्हे धमाका हुआ और वह हेलीकॉप्टर आग के बड़े शोले में तब्दील होकर बिखरता चला गया। इमरान ने इसी तेज रफ्तारी से हेलीकॉप्टर मोड़ा और एक और हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिया, जो लम्हों में फट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। जो हेलीकॉप्टर इमरान के हेलीकॉप्टर के ऊपर उठते ही मौका पाकर दाएं तरफ मुड़ गया था, वो तेजी से घूमता हुआ इमरान के हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहा था और इस हेलीकॉप्टर की मशीन गनों से मुसलसल फायरिंग होना शुरू हो गई थी। इमरान ने आग की धारें अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते देखी तो इसने तेजी से हेलीकॉप्टर दाएं तरफ मोड़ लिया। इसने इस तेजी से हेलीकॉप्टर मोड़ा था कि हेलीकॉप्टर एक लम्हे के लिए दाएं तरफ होकर नीचे की तरफ झुकता चला गया था और वो चूंकि ज्यादा बुलंदी पर नहीं था, इसलिए हेलीकॉप्टर किसी भी लम्हे नीचे गिर सकता था। लेकिन इमरान ने जिस तेजी से हेलीकॉप्टर दाएं तरफ मोड़ा था, इसी तेजी से इसने हेलीकॉप्टर को बाएं जानिब घुमा लिया और दूसरे हेलीकॉप्टर की मशीन गनों से निकलने वाली गोलियां इसके हेलीकॉप्टर के पैर से टकराती हुई गुजर गईं। जैसे ही इमरान ने हेलीकॉप्टर सीधा किया, दूसरा हेलीकॉप्टर तेजी से मुड़ा और इस हेलीकॉप्टर से यकलक दो मिसाइल निकलकर इमरान के हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े, लेकिन इमरान ने इन मिसाइलों को देख लिया था। इसने फौरन हेलीकॉप्टर को उफकी अंदाज में ऊपर उठा लिया। हेलीकॉप्टर उफकी अंदाज में उठाते हुए इसने मशीन गन के फायरिंग करने वाले बटन पर बेख्तियार अंगूठा रख दिया था। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी हुई मशीन गनों से गोलियों के बुछार हुई और सामने से आते हुए हेलीकॉप्टर पर पड़े। इमरान ने हेलीकॉप्टर उफकी अंदाज में बुलंद करके इसे मिसाइलों से बचा दिया था। मिसाइल जन्नाटेदार आवाजों के साथ इसके हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे से निकलते चले गए थे और दूर मैदान में जाकर फट पड़े थे, जबकि इमरान के हेलीकॉप्टर की मशीन गनों से निकलने वाली गोलियों से दूसरा हेलीकॉप्टर ना बच सकता था। गोलियां ठीक हेलीकॉप्टर के शीशे तोड़ती हुई फ्रंट पर बैठे हुए पायलट और इसके साथ मौजूद एक दूसरे शख्स को लगी थी, जो सुर्ख रंग की वर्दी में मुलविस था। इस हेलीकॉप्टर का पायलट जैसे ही हलाक हुआ, हेलीकॉप्टर को एक जोरदार झटका लगा और वो मुड़कर मुंह के बल नीचे गिरता चला गया और फिर जैसे ही वो रेत पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और इस हेलीकॉप्टर के भी परखचे उड़ते चले गए। इसमें से आग के शोले निकल रहे थे। इमरान ने हेलीकॉप्टर सीधा किया और फिर वो इसे मुख्तलिफ अतराफ में घुमाता हुआ इस तरफ ले आया, जहाँ इसके साथी और रेड कमांडोज में जबरदस्त फायरिंग, बमों और मिसाइलों का तबादला हो रहा था। हार्ड ब्लॉक्स की वजह से इमरान के साथियों का पलड़ा भारी था, लेकिन इमरान ज्यादा देर जंग को जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो हेलीकॉप्टर से रेड कमांडोज को निशाना बनाना शुरू हो गया। वो फायरिंग करके रेड कमांडोज को हलाक करता जा रहा था, जो दो तरफा हमलों से घबरा कर इधर उधर भागना शुरू हो गए थे। लेकिन वो भला भाग कर कहाँ जा सकते थे? नीचे इमरान के साथी मौजूद थे, जो इन्हें भाग निकलने का मौका ही नहीं दे रहे थे, और ऊपर इमरान ताक ताक कर इन्हें अपना निशाना बना रहा था। यहाँ तक कि मैदान साफ हो गया। अब हर तरफ बिखरे हुए हेलीकॉप्टरों के टुकड़े नजर आ रहे थे या फिर रेड कमांडोज की लाशें। इसके तमाम साथी महफूज थे। इमरान ने एज गेट के इलाके के दो तीन राउंड लगाए और फिर वो हेलीकॉप्टर नीचे ले गया। जैसे ही इमरान हेलीकॉप्टर नीचे लाया, इसके साथी भागते हुए वहां आ गए और फिर इमरान के इशारे पर वो सब हेलीकॉप्टर में सवार होना शुरू हो गए। कोई जिंदा बचा है? इमरान ने सर मोड़कर इनकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, सब ही हलाक हो गए हैं। कुछ को हमने मार दिया है और रही सही कसर तुमने हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके पूरी कर दी थी, जूलिया ने कहा। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे इनमें से एक आदमी जिंदा चाहिए, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, इसी लम्हे अचानक हेलीकॉप्टर में मौजूद ट्रांसमीटर जाग उठा और इमरान ने इन्हें खामोश रहने का इशारा करके हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, ब्लैक बर्ड 09, क्या पोजीशन है? तुम सब इस वक्त कहाँ हो और कर्नल देवगन से मेरा रابطہ क्यों नहीं हो रहा है? मैं कब से इसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनकर इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसने वो आवाज पहचान ली थी, जो काक सुल्ले के सिवा किसी और की नहीं थी। दुश्मन रेत में छुपे हुए थे। इनके पास असला भी था, जिनमें मिसाइल गने भी शामिल थी। हम हेलीकॉप्टर लेकर जैसे ही नीचे आए, उन्होंने अचानक रेत से बाहर आकर हमारे हेलीकॉप्टरों पर मिसाइल बरसाने शुरू कर दिए थे। मैंने और मेरे साथियों ने जवाबी कार्रवाई की और बेशुमार मुसल्ला अफराद नीचे उतार दिए थे, लेकिन वो सब दुश्मनों के हाथों मारे गए थे। और इन्होंने हमारे 9 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं। इनमें कर्नल देवगन भी मौजूद था, मगर मैंने बर्वक कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर उठा लिया था, इसलिए मैंने अपना हेलीकॉप्टर इनके मिसाइलों की जिद में आने से बचा लिया था और फिर मैंने इन पर ऊपर से ही शदीद फायरिंग करना शुरू कर दी थी और मिसाइल भी बरसा दिए थे जिससे वो सब हलाक हो गए हैं। ओवर, इमरान ने आवाज बदलकर कहा। वो जानबूझकर आवाज बदलकर बात कर रहा था क्योंकि इसने पायलट की असल आवाज नहीं सुनी थी, वरना वो इसकी आवाज में काफिले को जवाब देता। क्या कहा? इन 9 फ्लार ने 9 हेलीकॉप्टर और 50 से ज्यादा रेड कमांडोज को हलाक कर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? इनके पास इतना असला कैसे आ गया था? ओवर, दूसरी तरफ से काफिले की हैद भरी और चीखती हुई आवाज सुनाई दी। इनके पास पहले से ही असला मौजूद था जनाब, और इनकी अचानक कार्रवाई ने हमें नुकसान पहुंचाया है। अगर हमें मालूम होता कि वो रेत में छुपे हुए हैं, तो हम ऊपर से ही यहाँ हर तरफ मिसाइल और बम बरसाकर इनके टुकड़े उड़ा देते। ओवर, इमरान ने कहा। तमाम दुश्मनों की तादाद कितनी थी? ओवर, दूसरी तरफ से काफिले ने गुर्राहट भरे लहजे में पूछा। 9 अफराद थे जनाब, इनमें एक लड़की भी थी। ओवर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इनकी लाशें कहाँ हैं? ओवर, काफिले ने इसी अंदाज में पूछा। इन सबकी लाशें मेरे सामने पड़ी हैं जनाब। ओवर, इमरान ने कहा। क्या इनकी लाशें इस हालत में हैं कि तुम इन्हें उठाकर हेडक्वार्टर ला सको? ओवर, दूसरी तरफ से काफिले ने पूछा। और इसके बाद सुनकर इमरान की आंखों में यकलख्त बेपना चमक आ गई। इनकी लाशों की हालत बहुत खराब है जनाब, लेकिन बहरहाल इनके चेहरे देखे जा सकते हैं। मैंने साथ ला सकता हूँ। ओवर, इमरान ने कहा। तुम्हारे साथ कितने कमांडोज हैं? ओवर, दूसरी तरफ से काफिले ने पूछा। मैं अकेला ही हूँ जनाब, मैंने भी हेलीकॉप्टर से तमाम रेड कमांडोज को नीचे उतार दिया था। ओवर, इमरान ने कहा। ओके, मैं मजीद हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, तुम इनके साथ दुश्मनों की लाशें उठाकर हेडक्वार्टर ले आओ, मैं इन लाशों को एक नजर खुद देखना चाहता हूँ। ओवर, काफिले ने कहा। बेहतर जनाब, आप कहें तो मैं इन सबको खुद ही हेलीकॉप्टर में डालकर ले आता हूँ, मजीद हेलीकॉप्टर भेजने की जरूरत नहीं है। ओवर, इमरान ने कहा। नहीं चीफ, वापस आने वाले नहीं हैं, इन्हें वहाँ हर तरफ रेड कमांडोज और ब्लैक बर्ड्स के टुकड़े नजर आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इनके आने से पहले वहाँ से सारी लाशें उठा ली जाएं और हेलीकॉप्टरों के टुकड़े गायब कर दिए जाएं, और ये काम तुम अकेले नहीं कर सकोगे। ओवर, काफिले ने कहा। यस सर, ठीक है सर, जैसे आप कहें। ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। या ऐसा करो कि तुम इनकी लाशें लेकर वापस आ जाओ, तब तक मैं वहाँ से रेड कमांडोज की लाशें उठवाने के लिए मजीद रेड कमांडोज को भेज देता हूँ, वो वहाँ आकर खुद ही सारी सफाई कर देंगे। ओवर, काफिले ने जिसे सोचते हुए कहा। यस सर, ठीक है सर, मैं इनकी लाशें ले आता हूँ। ओवर, इमरान ने जवाब दिया। जल्द से जल्द वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। ओवर, काफिले ने तेज लहजे में कहा। यस सर, मैं थोड़ा देर तक पहुँच रहा हूँ। ओवर, इमरान ने कहा, और दूसरी तरफ से काफिले ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर ब्लैक हार्ट एजेंसी के मेन हेडक्वार्टर का ही है और इन सबको वहीं से हमें हलाक करने के लिए भेजा गया था। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया तो जूलिया ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा। हाँ, इमरान ने इस बात में सही हिलाकर कहा। और ये आवाज काफिले की थी, मैं इसकी आवाज पहचानता हूँ, तनवीर ने कहा। ट्रांसमीटर की आवाज वाजे सुनाई दे रही थी और आवाज के साथ कोई शोर या खड़खड़ाहट भी नहीं थी, जिसका मतलब है कि कॉल दूर से नहीं नजदीक से की गई है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की कॉल होती तो ट्रांसमीटर में शोर भी होता और कड़कड़ाहट की भी आवाज सुनाई देती, सिद्दीकी ने कहा, जो ट्रांसमीटर एक्सपर्ट था। हाँ, ट्रांसमीटर के साथ एक मीटर भी लगा हुआ है जो ये शो कर रहा है कि कॉल शुमाल की जाने से की गई है और ये कॉल 90 डिग्री और 40,000 गज के फासले से की गई है, जो तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला बनता है, इमरान ने कहा। ओ इसका मतलब है कि ब्लैक हार्ट एजेंसी का मेन क्वार्टर इसी हार्ट डिजर्ट में ही है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, और ये हमारे लिए अल्लाह का एक और खुसूसी करम हुआ है कि हमें इस हेड क्वार्टर की तलाश में मारे मारे नहीं फिरना पड़ा है और हम नादानस्तगी में ही ब्लैक हार्ट एजेंसी के मेन हेड क्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे, इमरान ने कहा। हम हक पर हैं और बातिल के मुकाबले में जीत हक की होती है, और जो हक पर होता है इसे कहीं ना कहीं से और किसी ना किसी तरह से कुदरत का साथ मिल ही जाता है। यही हमारे साथ हुआ है। अगर काफिले हमें हलाक करने के लिए यहाँ रेड कमांडोज ना भेजता और तुम इस हेलीकॉप्टर पर कब्जा ना करते तो हमें वाकई ब्लैक हार्ट एजेंसी के मेन हेड क्वार्टर की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ की खाक छानना पड़ती, जूलिया ने कहा। ये नॉवेल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 20 में समाप्त फरमाए।